तो प्रश्न होगा पहला पत्ता प्रतिबिंब, तो उस पत्ते को जन्म देने वाला बीज कौन होगा? प्रश्न साकार में होगा तो प्रश्न का बाप कैसा होगा? साकार नहीं होगा तो उसका रचयिता कौन है? तो बाबा नहीं होगा, तो बाबा नहीं होगा। लेकिन एक वाणी में तो बाबा ने बोला हुआ है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। सदा कायम शिव बाबा क्यों कह दिया? हाँ, सिर्फ ज्योतिबिंद हो वहां का बात होकर के रहता है 5000 वर्ष, सिर्फ संगम में आता है। लेकिन जो साकार रूप में है, इस सृष्टि पर है, शिव बाबा के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो तो फिर भी रहेगा। क्या जी तो चलता है ना, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, पुनर्ज लगेगा 100-100 बार हमने जन्म लिया है। कितने बार? 100 बार, 84 बार हमने जन्म लिया। तो अभी तुम जानते हो, बात है ज्ञान का मान सरोवर। क्या ज्ञान मान सरोवर, और ये है ज्ञान नदी। कौन सब बच्चे ज्ञान नदियां हैं, उन नदियों वैरायटी नदियां हैं ना। हाँ, तो ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र तो वो भी ब्रह्मा के नदी, वो तो ब्रह्मपुत्र हो गए। बाकी कौन कौन सी नदी है? हाँ, जगदम्बा सरस्वती कही गई, फिर गंगा कही गई, यमुना कही गई, ये सब रचना है ना किसकी? ज्ञान सागर बाप की। तो बात है ज्ञान मान सरोवर। क्या है? ज्ञान मान सरोवर। अच्छा, मान तो हो रहे यहाँ बाबा को क्यों याद आया? अभी तक सागर की बात कर रहे थे कि सागर में पीपल का पत्ता है, अब बोल रहे हैं ज्ञान मान सरोवर। मान सरोवर से कौन सी नदी निकलती है पता है? ब्रह्मपुत्र नदी। जो ज्ञान मान सरोवर है उसको ज्ञान सागर नहीं कहा। वास्तव में ज्ञान सागर कौन बोला? सुप्रीम कौन शिव। और ज्ञान मान सरोवर कौन हुआ? जिसमें शुद्ध जल भरा रहता है, जिसके किनारे हम से निवास करते हैं। क्या? हाँ, हम सारे परम हंसों का निवास कहा होता है? मान सरोवर झील के किनारे। तो उससे निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा क्यों कहते हैं बाबा? उसका नाम क्या है? दुनिया वाले उसका नाम क्या देते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र लक्ष्य में नाम क्या है देखना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। पुत्रा क्यों कहा? क्या पुरुष है? पुरुष है कैसे? नदी होगी तो स्त्रीलिंग होगी तो पुल्लिंग होगी, स्त्री मंगवानी चाहिए। और ये कहते हैं कि पुत्र है, देखने के लिए पुरुष है और अंदर से स्त्री है, शिखंडी तो नहीं है। कहते हैं शिखंडी के द्वारा बड़े बड़े भीष्म पितामह को बाण मरवाए। ब्रह्मपुत्र नदी जो उसी रचना ज्ञान मान सरोवर की। ज्ञान मान सरोवर से क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। परम ब्रह्म है उसकी पुत्र नाम क्यों दिया? विजयमाला का मांका है या रुद्रमाला का मांका है? रुद्रमाला का मांका है तो ब्रह्मपुत्र है। विजयमाला के माने क्यों होंगे? तो तो ब्रह्मपुत्र होगी, लेकिन दुनिया ने उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी रखा है, लेकिन बाबा उसको क्या कहते, ब्रह्मपुत्र नदी। ये है ज्ञान नदी और तुम हो सरोवर। तुम क्या हो? तुम हो सरोवर। किसने कहा? मुन्ना बाबा कहने वाले हैं मुरली हम। गीता का भगवान किसने बनाई दी है? और किसने कहा? किस बाप ने कहा? हाँ, राम वाली आत्मा को कहा, तुम हो ज्ञानमान सरोवर और ये है ब्रह्मपुत्र। यह रचना और तुम हो रचयिता। रचयिता साकार में होता है या निराकार? रचयिता भी साकार में होगा तो रचना भी साकार में होगी। तो यह है ज्ञान नदियां और तुम हो सरोवर। नदी ने क्यों कहा? फिर ज्ञान नदी, अगर ब्रह्मपुत्र की ही तरफ इशारा हो तो ज्ञान नदी कहना चाहिए। सब नदियों का बहाव कैसा हो? ध्यान देना, पहले पहाड़ से नीचे उतरती है, ऊंचाई से नीचे उतरती है, जैसे गंगा की संकरी जटाओं के ऊपर से नीचे उतरते हुए दिखाया गया, तो उस स्टेज से नीचे उतरती है, फिर मैदान में आती है, फिर बाद में सागर में मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में विशेषता है क्या? क्या विशेषता है और नदियों के मुकाबले? क्या विशेषता है? नहीं मालूम। वो हिमालय पहाड़ पर ही बहती रहती है क्या? हाँ, और नदियां तो जल्दी मैदान में आ जाती हैं, नीचे की स्टेज में कचरे की दुनिया में आ जाती हैं, और वो नदी कचरे की दुनिया में जल्दी नहीं जाती, वो पहाड़ों से बहती हुई आती है। और किस तरफ से किस तरफ? कुछ नदियां तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, उनका बहाव होता है पश्चिमी सभ्यता की ओर जाने का। क्या जन्म हुआ और किधर जाती है? पश्चिमी सभ्यता की ओर। और गंगा यमुना सरस्वती और ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव कैसा है? हाँ, आती है उत्तर से, फिर उत्तर पश्चिम दिशा से पश्चिमी सभ्यता की ओर से पूर्व दिशा की ओर बहती है। यानी पहले भले उनमें पश्चिमी सभ्यता के कुछ गुण हो, लेकिन फिर बाद में धीरे 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 वो पूर्वीय सभ्यता माने भारत की सभ्यता को अपनाने वाली बन जाती है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और पूर्व की अति में चली जाती है। कहां तक पहुंचती है? बौद्ध धर्म खंड तक। किसके नजदीक पहुंच जाती है? बौद्ध धर्मखंड के सबसे नजदीक पहुंचती है। इस चैतन्य नदी की बात समझ रहे हैं या जड़ नदी की बात समझ रहे हैं? चैतन्य नदी की बात समझ रहे हैं। अब फिर वहां से एकदम मोड़ लेती है। किस तरफ? बौद्ध धर्मखंड से भारत खंड की ओर। पहले चली गई बौद्ध धर्मखंड की तरफ और फिर मुड़ी तो भारत खंड, तो जरूर कहीं टकराई होगी। टकराती है और फिर वापस आती है भारत खंड की ओर, और गंगा में ब्रह्मपुत्र का पहले मेल होता है। क्या कहा? सीधा गंगा सागर में जाकर नहीं गिरती। गंगा पहले कौन सी नदी से मिलती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा का पहले मेल हो, गंगा के साथ यमुना का मेल तो पहले ही हो जाता है, लेकिन गंगा यमुना मिलकर के जो गंगा नदी बन जाती है उसका मेल पहले ब्रह्मपुत्र से होता है। तो जरूर संस्कारों में क्या होगा? पहले
पहले टकराव होगा, एक दूसरे की पसंद भी नहीं होगी, फिर बाद में उधर से ब्रह्मपुत्र मुड़ करके आती और इधर से गंगा जाती, यमुना तो नाम खत्म। यमुना ने तो कुछ ऐसा काम किया काला, जिससे वो काला पानी जो है गंगा में मिलकर के खलास हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म, फिर वो गंगा हो गई। तो गंगा जाकर के यमुना से वो ब्रह्मपुत्र से मिलती और फिर दोनों नदियां सागर की तरफ बहती, ज्ञान सागर की ओर, भाव की तरफ हो जाता है ज्ञान सागर की ओर। तो ज्ञान सागर की ओर जो बहाव होता है उसमें से सागर और गंगा का मेल होता है। बाबा ने उसको नाम क्या दिया है, किसका किसका मेल, गंगा सागर नाम देते हैं दुनिया वाले, और बाबा ने नाम क्या दिया है ना, बाबा मानसव रोता है। दुनिया वाले तो नाम देते हैं गंगा सागर का मेला, और बाबा ने नाम क्या दिया है, ब्रह्मपुत्र। और सागर का मेला है वास्तव में, वास्तव में मेला कौन सा है, ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला, लेकिन दुनिया वालों ने किसका मेला नाम लगा दिया, गंगा सागर का मेला नाम लगा दिया। तो इस रहस्य को भी समझना है। तो ये है ज्ञान नदियां और तुम हो ज्ञानमान सरोवर, इन नदियों को जन्म देने वाले। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, मान सरोवर और ब्रह्मपुत्रा का प्रवृत्ति मार्ग हो गया। किसका किसका प्रवृत्ति मार्ग हो गया, नदियों और सरोवर या सागर का प्रवृत्ति मार्ग हुआ। तुम्हारा पवित्र गृहस्थाश्रम था, पहले तुम्हारी गृहस्थी कैसी थी, पवित्र थी, अभी पतित बन गया। वो नदियां नीचे स्टेज में आकर के पतित बन जाती है, इधर उधर का कचरा समेट लेती है। ये दसवीं वृत्ति का कचरा पड़ता है तो उसका असर जरूर पड़ता है। ऐसे नहीं है कि शूटिंग पीरियड में असर नहीं पड़ता है, या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जब बेसिक नॉलेज ली, ब्रह्माओं का पहला जन्म हुआ तो वहाँ दृष्टि योग सिखाया जाता है उल्टा योग, तो वही असर पड़ता है, और एडवांस नॉलेज लेने के बाद वो असर पड़ना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है, एडवांस नॉलेज लेने के बाद दृष्टि में और भी फोर्स आता है, क्योंकि परमात्मा बाप से बुद्धि योग लगाने का और दृष्टि योग लगाने का विशेष अभ्यास कराया जाता है। तो शक्ति बढ़ेगी या घटेगी, शक्ति बढ़ेगी, तो दृष्टि में और ही ज्यादा पावर आ जाती है। अगर पावरफुल तार में पावरफुल बिजली दौड़ रही हो और उसका कनेक्शन नेगेटिव के साथ कर दिया जाए तो क्या होगा, करंट तेजी से पास होगा, यानी ह्रास भी तेजी से होता है। क्यों, क्योंकि बाप ने तो हमको बता दिया ना कि जब एक बाप के बने तो क्या करना है, एक बाप दूसरा न कोई, इंद्रियों का संबंध किसी दूसरे से नहीं जोड़ना जो याद आए। अगर संबंध दूसरे से जोड़ा तो क्या होगा, पतित बनेंगे, करंट तेजी से पास हो जाएगा, आत्मा शक्तिहीन हो जाएगी, क्योंकि श्रीमत का उल्लंघन किया, श्रीमत की लीका का उल्लंघन किया, रावण ले जाएगा। तो बोला तुम सब सीताएं हो और राम बाप है एक, तो ये शक्ति क्षीणता होती। नदियां जब कचरे के मैदान में आती हैं, तो तेजी से कचरे की दुनिया का संग का रंग लगता है, और बाप के संग से फिर क्या होता है, दूर हो जाती है। इसलिए वाणी में बोला नदी का अगर सागर से संबंध नहीं तो नदी नहीं वो नाला है। नाले में और नदी में क्या अंतर होता है? है? नाले का पानी भी सागर में जाता है। हाँ, नाला जो होता है उसमें मलमूत्र है का बहाव डाला जाता है, और नदी जो होती है वो स्वच्छ जल वाली होती है, उसमें नाले वगैरह जब मिलते हैं जाकर के तब नदी गंदी होती है। तो बोला तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना, तुम्हारा प्रवृत्ति पवित्र गृहस्थ आश्रम था जब ऊंची स्टेज पर तुम बह रही थी, अभी पतित तो हो गया। बात समझाते हैं, ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं, हम शरीर शरीर नहीं है। ये देह का होना नदियों को बहुत आता है। क्या देह का होना स्त्री जाति को ज्यादा आता है कि पुरुष जाति को? है? हाँ, क्योंकि सौंदर्यवान शरीर होता है तो उसका होना, उसका अभिमान जाति कन्या माताओं को आता है। तो बोला याद रखो कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। सौंदर्यवान शरीर की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये बाबा ने बोला ऐसे संगम युग में तो काली खुतरी गूची हो तो और अच्छा, किसी की दृष्टि नहीं जाएगी तो सेफ रहेंगे। तो सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं। एक बाप को याद करना, बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद न करो। क्या किसको फरमान दिया जा रहा है यहाँ? बात किसकी हो रही है? बाबा को फरमान दिया जा रहा है। बाबा ये डायरेक्शन सब किसको दे रहे हैं? कौन से बच्चों की यहाँ बात चल रही है? सुनते जाते हैं और भूलते जाते हैं। है? ब्रह्मा से ही बात हो रही है सिर्फ। हाँ, नदियों से बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है और दूसरी नदियों की बात हो रही है। तो नदियों के लिए बताया कि सागर से जब तक कनेक्शन है तब तक नदी पतित पावनी है, और सागर से संबंध टूटा तो नदी नहीं वो नाला बन जाती, फिर वो पतित बनाने वाली बनती है, पतित पावनी नहीं रहती। तो कोई भी देहधारी को याद ना करो, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाना। नदियों के लिए ये खास, उनमें भी खास कन्याओं को संग का रंग सबसे जाती लगता है। माताएं तो फिर भी अपने जीवन की अनुभवी होती हैं लंबे समय की। तो बोला कोई भी देहधारी को याद ना करो, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाना। क्या खत्म हो जाना है? सब कुछ क्या? देह सहित देह के साथ संबंध खत्म हो जाने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव। क्या बाबा? मन मना भव। इसका उल्टा क्या हुआ? तन मना भव। अगर किसी तन को बुद्धि में याद किया, बाप का तन, बाप ने जो तन लिया है, बाप ने जो तन वेरीफाई किया है, मुकर्रर किया है, उसके अलावा अगर और कोई तन को याद किया तो क्या होगा? तो तन मरना भव जरूर होगा, वो सब विनाशी है। बाप ने जो तन लिया है बाप के रूप में प्रत्यक्ष होकर के, वो तन विनाश होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए गायन है। क्या? अकाल मूल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जितने और देहदारी हैं सब विनाशी स्टेज को पाने वाले हैं। कोई 10 दिन के लिए विनाश को पाएंगे सत्तु से, कोई 5 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए, लेकिन एक ऐसा है जिसका विनाश इस शक्ति से नहीं होता। ऑल राउंड पार्ट धारी तो इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव। मन मना भव का अर्थ क्या हुआ? मन को, हाँ, तुम अपने मन को मेरे मन में समा दो। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा, मेरे मन में समा जा। अर्थात मेरे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं उन संकल्पों में अपने मन के संकल्पों को समा दो। दूसरे कोई संकल्प तेरे अंदर नहीं चलना चाहिए। जो बाप का संकल्प, जो बच्चे का संकल्प, तो संकल्प मात्र तक भी अगर इतना परिवर्तन किया तो बात अगर कैसे विपरीत चल सकती है? वाचा का टकराव कैसे हो सकता है? जब मन का ही नहीं होगा, पहले मन में संकल्प आता है विरोध का, तब वाचा में आता है, फिर कर्मणा में आता है, तो मन मना भव, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? अगर मन मना भव हो गए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, क्या रिजल्ट होगा? मत याजी भव। जो मन मना भव हो जाएगा, जितने परसेंटेज में मन मना भव होगा वो मत याजी भव जरूर होगा। याजी माने कर्म करना, मेरे में कर्म करने वाला बन जाएगा, दुनिया के लिए कर्म करने वाला नहीं होगा। क्या मत याजी भव? कर्म किसके अर्थ करेगा? मेरे लिए, भगवान के लिए कर्म करेगा, अपने लिए कोई कर्म नहीं करेगा, दुनिया वालों के लिए कोई कर्म नहीं करेगा। उसके सारे कर्म, मुख से बोली हुई वाचा भी किसके अर्थ होगी? परमात्मा के कार्य के अर्थ होगी, ना अपने लिए होगी, अपने कल्याण के लिए भी नहीं, अपने मन इस तन के कल्याण के लिए, रथ के कल्याण के लिए, यानी स्वार्थ के लिए नहीं होगी। किसके लिए होगी? परम अर्थ है। एक होता है स्व अर्थ, स्व रथ, अपने रथ के लिए जो काम किया जाए। एक पेट भरने के लिए हम कोई धंधा करें दुनियावी, तो हो गया स्व अर्थ। ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं तो ईश्वरीय सेवा में ये भाव है कि इस व्यक्ति की समझ में आ जाए तो सेंटर बहुत बड़ा बन जाएगा, उस सेंटर में बैठ करके हम राज करेंगे। तो इसको स्वार्थ की सेवा करेंगे या परमार्थ की सेवा कहेंगे? ये स्वार्थ की सेवा हो गई, उसका कोई फल नहीं बनेगा। बल कितनी भी सेवा की, फल नहीं बन सकता। वो विनाशी सेवा हुई। ऐसी सेवा से जो फल निकला है, वो बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां और ये जितने भी मठ है और पंथ है और जो जितने भी अड्डे हैं वो सब टूट फूट जाएंगे। स्वर की स्थापना में सहयोगी नहीं बन सकेंगे। तो मन मना भव, उसका रिजल्ट होगा मध्याजी भव, मेरे अर्थ कर्म करने वाला बन जाएगा। मेरे अर्थ कर्म करने वाले बनो। मध्याजी भव, मत माना मेरे में, याजी माना यजन करने वाला, यज्ञ कर्म करने वाला, भव माना हो जा, अर्थात मेरे अर्थ कर्म करने वाला बन जा। इस कब्रस्तान को भूलते जाओ। ये दुनिया, ये महल मानियां आचारियां, ये इतने बड़े बड़े कारखाने, ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बन रहे हैं, ये सब अज्ञान की पैदाइश है, अज्ञान के द्वारा बनाई गई। इनसे क्या होगा रिजल्ट? इनका तो विनाश होना है। ये कब्र दाखिल हो जाएंगे, कब्रस्तान, कब्र का स्थान बन जाएंगे। इनमें कौन दफनाए जाएंगे? मुर्दे। बाहरी दुनिया के मुर्दे तो बाद में दफनाए जाएंगे, लेकिन ज्ञान में जो मुर्दे बने पड़े हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की कोई बात बैठ नहीं रही है, ऐसे दो अभिमानी सांढ़े बन चुके हैं कि देहधारियों से ही कनेक्टेड हो पड़े हैं, परमात्मा को बिल्कुल
भूल चुके हैं। बन जाएंगे کر لیں گے.
تو قبرستان کو بھولتے جاؤ. مایا کی طوفان تو بہت آئیں گے. کیا مایا کو بات کیا کہتے ہیں؟ بیٹی کہتے ہیں. ہے تو مایا پتی بھی. بکتی مار میں بھگوان کو کیا کہتے ہیں؟ مایا پتی. کیونکہ مایا نے یہ تمنا سمجھ سے جاتی کی کیا یہ سرسوتی کا بن کے جگدمبا کا نہ رہے. کس کا بن کے رہے؟ مایا دیکھی نے یہ تمنا کی کہ یہ جگدمبا سرسوتی کا کیوں بنا ہوا ہے, میرا بن جائے, اس کا چتر ہٹا دیا جائے. کس کا؟ جگدمبا سرسوتی کا. اور اس کے سان پر سیٹ پہ کون سیٹ ہو جائے؟ میں مایا بیٹی سیٹ ہو جاؤں. تو اس کی بھی تمنا باپ کچھ سمے کے لیے پوری کرتے ہوں گے, لیکن ستی کو تریتا میں پوری نہیں کرتے. یہ تمنا کہاں پوری ہوتی ہے؟ جا کر کلی اس کی شوٹنگ میں کچھ نہ کچھ پوری ہوتی ہے, اس لیے وہ مایا پتی بھی کہا جاتا ہے. مایا پتی بھگوان کہا جاتا, لکشمی پتی بھگوان کہا جاتا, اور کس کا پتی کہا جاتا ہے؟ ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لکشمی پتی, مایا پتی اور پرکرتی پتی. پرکرتی پرکٹ روپیہ کرتی کی گئی ہے, جس کی کرتی میں نے رچنا, یعنی سب سے پہلی جو رچنا ہے اس کا پتی. سب سے پہلی رچنا کون؟ رمنی اتنا رچنا ہے. واہ واہ, تو رچتا کون ہے؟ اچھا برہما اس کا رچتا ہو گیا, جو بڑی اما ہے وہ رچتا ہو گئی, اور باپ ہو گیا رچنا. ارے رچتا ساکار ہوتا ہے اور رچنا بھی ساکار, کریٹر ہوتا ہے ساکار, کریٹر کبھی نراکار نہیں ہوتا. تو کریٹر کون ہے, کریشن کون ہے؟ سارا تو گیان اسی میں سمایا ہوا ہے. روز بابا ماتھا مارتے رہتے ہیں کہ رچتا اور رچنا کے آدھی مدینت کو نہیں جانتے, ان کو کہیں گے ناسک. تو اگر نہیں جانتے ابھی بھی ایڈوانس نالج لے رہے ہیں, دوسرا جنم لے لیا ہے, کہتے ہم نے بھگوان باپ کو پہچان لیا. بچے ہیں, اچھا بچہ بدھی ہیں, مطلب کہ ابھی بڑے بچے کوئی اور ہیں جو پہلے برسہ لے لیں گے. تو رچتا کون ہے؟ ہاں پرجاپتا کے تن میں شیو باپ نے پرویش کر کے سب سے پہلے جس کی رچنا کی, برہما. برہما بھی کون تھا, آدی برہما یا مدھیہ برہما یا انت برہما؟ پہلے کس کی رچنا کی؟ آدی برہما کی. پرماتما آئے گا تو سب سے پہلے آدی برہما کی رچنا کرے گا کہ مدھیہ والے کی پہلے کر دے گا؟ آدی برہما. ہاں تو آدی برہما کون؟ آدی برہما مدھیہ برہما ایک ہی ہے. چلو تو ایڈوانس نہ لے, پکی لے لی. وہ تو دو ہو گئے, وہ پتا ہو گیا, وہ اما ہو گئی. ہاں ماتا ہی پہلی رچنا ہوتی ہے. پہلی رچنا کون ہوتی ہے؟ پہلی رچنا کون؟ ماتا. تو یہ بھی کہ آدھی میں برہما کو بھی کنٹرول کرنے والی کوئی ماتا تھی. جو ماتا تھی وہی واسطہ میں انادی ہے. انادی کا مطلب جس کا آدھ نہیں اور انت بھی نہیں ہوتا, وہ ہے پرکرتی. پرکرتی ماتا, کیونکہ پرکرتی پتی کہا جاتا ہے نا, تو وہ ماتا ہوئی. جڑا اسکول تو ایک ہی بات ہو گئی, جڑا مانے اسکول اور چیتنیہ پرکرتی وہ ہو گئی سوکشم. چیتنیہ جو پرکرتی ہے ضرور کوئی چیتنیہ روپ میں ہوگی. کہتے ہیں نا بھائی قدرت کے نیموں کو نہیں توڑنا چاہیے. کیا پرکرتی وکرال روپ کب دھارن کرتی ہے؟ ہاں جب پرش مانے آتمائیں اپنے راستے سے ہٹ کر کے मनमाना आचरण करती तो प्रकृति जो है उनको दंड जरूर देती, फिर विकराल रूप धारण करती। अभी भी प्रकृति बाढ़ लाती है, अकाल लाती है।
5386 का प्रातः क्लास कर रहा था, 12 नंबर के रजिस्टर में छठा पेज और बात मुरली का तीसरा पेज मध्यान्ह में। बाप कहते हैं सबको छोड़ो, इसको कहते हैं ब्रह्मा से। अब मैं तुमको मिला हुआ हूँ, सर्व का सदगति दाता एक है, कहते भी है सबकी अकाल, अर्थ नहीं समझते कि किसके कहते हैं सबकी अकाल, ब्रह्मा से कहते हैं। ब्रह्मा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का पक्का था, है वो तो अंतिम जन्म में भी बड़क जाति के ब्राह्मण थे और बल्लवाचार्य संप्रदाय के थे, उनसे क्यों कहते हैं सबकी अकाल, ये तो सिखों में कहा जाता है, ये गायन तो सिखों का है, तो ब्रह्मा से क्यों कहा सबकी अकाल। जब उनका ब्रह्मा कहने वाली सोल वो आत्मा ही इस धर्म की है, देवी देवता सनातन धर्म की आदि, कृष्ण बच्चा और राम बाप, जिस कुल का बाप होगा उस कुल का बच्चा होगा, तो फिर उसको शक्ति अकाल के याद दिलाया, तो सिखों में गाय नहीं, तो जरूर ब्रह्मा वाली सोली ही जिस तन में प्रवेश करके फाउंडेशन डालती है नई दुनिया का, वो आत्मा उस पंजाब के खून से आती है, जहाँ का ये गायन है क्या सत श्री अकाल। वो अकाल मूर्त कैसा है, सत्य है, ऐसी भी सत्य, वो सी भी सत्य, वर्तमान में भी सत्य है, पहले भी सत्य था, आगे भी सत्य होगा, और अकाल मूर्त जिसको काल खा नहीं सकता, और जो मूर्त मान है, मूर्त मान साकार, अमूर्त मान तो सच्ची अकाल मूर्त कहते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं कि वो सर्व का सदगति दाता एक कौन है, ब्रह्मा के थ्रू नहीं, उसको तो काल खा गया, अर्थ समझना चाहिए ना, सत्य है तो जरूर उसकी सत्यनारायण की कथा भी बनती है, एक ही सत्य है और एक ही कथा बनती है, एक ही ऐसा है जिसको काल खा नहीं सकता, सारी दुनिया को काल खा जाएगा, लेकिन वो फिर भी ऑलराउंड पार्टधारी कहा जाएगा, 5000 वर्ष के ड्रामा में उसको काल खा नहीं सकता और वो मूर्तमान है, ऐसे नहीं कोई सूक्ष्म बटन में पार्ट बजाने वाला या परम धाम में रहने वाला, नहीं, इस साकार शक्ति पर होते हुए साकार में वो निराकार स्टेज में रहने वाला अकाल मूर्त, तो वो सर्व का सदगति दाता एक शक्ति अकाल का अर्थ भी समझना चाहिए ना, पढ़ते तो बहुत रहते हैं क्या, पढ़ाइयां बहुत पढ़ते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते कि वो अकाल मूर्त कौन है, सर्व का सदगति दाता एक कौन है। बाप समझाते हैं ये साधु भक्त आदि सत्तमो प्रधान है, जो अर्थ को नहीं समझते, कहते रहते हैं लेकिन समझते नहीं है, वो कैसे हैं, वो साधु संत कैसे हैं, है? साधु माना साधना करने वाले, साधु नाम क्यों पड़ा,
انہوں نے سادھنا کی. کائے کی سادھنا کی؟ یہ پینسل اوپر سے نیچے گر رہی ہے تو یہ سبھی نہیں نیچے گر گئی اور اس کو سادھ لیا, گر نہیں پا رہی ہے, سبھی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں سادھنا. کس چیز کی سادھنا؟ اندریوں کی سادھنا. تو یہ سادھو سنت اندریوں کی سادھنا تو کرتے ہیں لیکن سب تمو پردھان ہیں, جانتے نہیں ہیں کہ واسطو میں اندریوں کی سادھنا کیسے ہو سکتی ہے اور اندریوں کی سادھنا کرانے والا کون ہے. جو اندریاں کنٹرول میں آ جائیں کیا کرتے ہیں وہ سادھو لوگ؟ کیا کرتے ہیں اندریوں کو سادھنے کے لیے؟ ہٹ لوگ کرتے ہیں, گھر گھاٹ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. پرماتما باپ کہتے ہیں یہ تو تمہاری کائرتا ہے چھوڑ کے بھاگنا, دور باز خوش باز ہو جانا. ہاں گھر گست کے کیچڑ میں رہتے بھی ایک باپ کی بن کر کے رہو. تو یہ سب تمو پردھان ہیں, ستو پردھان تھے اب سبھی پتی تھے. پہلے ستو پردھان تھے, جب ستو پردھان تھے تو گرگست میں رہنے والے تھے اور اب چھوڑ کے بھاگتے ہیں تو اب تمو پردھان پھر پاون بنیں گے. جیسے چھ ستو پردھان ویسے ہی ستو پردھان پھر بنیں گے بھارتی اویناشی. یہ کوئی کو پتا نہیں ہے کیا سب دھرم کھنڈوں کا وناش ہوتا ہے؟ ایک بھارت کھنڈ ایسا ہے جس کا وناش نہیں ہوتا. ہے سی بھی سچ, تھا بھی سچ اور رہے گا بھی سچ. سچ کا کبھی وناش نہیں ہوتا. بھارت کی بہت مہمہ ہے اور دھرم کھنڈ امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے. 300 سال پہلے آسٹریلیا کا نام نشان منشیہ کو نہیں تھا. 500 سال پہلے امریکہ اتنا بڑا کھنڈ کرسچن دھرم کھنڈ, اس کا منشیہ کے مستک پٹن پر نام نشان نہیں تھا. وہ پہلے نہیں تھا نا, ضرور سمندر کے گرت میں سمایا ہوا تھا جب ایٹم بموں کے 5000 برس پہلے وسفوٹ ہوئے تھے. تو یہ سب دھرم کھنڈ سمندر کے انترال میں سمائے گئے کیونکہ وناشی دھرم کھنڈ ہے. ان میں جو دھرم کی دھارنا چلتی ہے وہ کیسی ہے؟ وناشی. بھارتی اویناشی یہ کوئی کو پتا نہیں کہ بھارت اویناشی ہے, کھنڈ بھی اویناشی ہے. تو وہ پرسنالٹی جس کا نام بھارت ہے وہ بھی اویناشی. بھارت ماتا بھی اویناشی ہے. کیسی اویناشی ہے؟ کیسی اویناشی؟ اس کی پوترتا کا وناش جن میں آنے کے بعد نہیں ہوتا. اکھنڈ ہے, وہ کھنڈت نہیں ہوتی. یہ کوئی کو پتا نہیں. بھارت کا کب وناش نہیں ہوتا اور نہ کب پرلے ہوتی ہے. پرمانے پرکٹ اور لے مانے لین ہو جانا, یعنی سب کچھ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ سب سماپت ہو جائے, ایسی پرلے کب ہوتی نہیں. کچھ نہ کچھ بیج رہتا ضرور ہے. آدی سناتن دیوی دیوتا دھرم جیسے پرائے لوپ ہوتا ہے, پورا لوپ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہ سستی بھی انادی اور اویناشی ہے, اس کا پورا لوپ نہیں ہوتا. جیسے آتما ست ہے, چت ہے, سوئم میں آنند سوروپ ہے, شانت سوروپ ہے, ایسے ہی یہ سستی بھی اس کا کبھی پورا وناش سلح کبھی نہیں ہوتی. یہ سب جھوٹ ہے کہ پانی کا بدبودا پانی میں مل جائے گا, سستی لین ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. پیپل کے پتے پر تو بچہ آ نہیں سکتا, جیسا انہوں نے شاستروں میں دکھائی دیا ہے کہ ساگر میں پیپل کے پتے کی نویا اور اتنی ہلکی نویا اور اس پر کتنا بچہ پڑا ہوا ہے, انگوٹھا چوستا ہوا, تو ایسا ہو سکتا ہے کیا है? اتنی ہلکی نویا اس پہ تو بچہ بیٹھے گا تو ڈوبی جائے گی है? ساگر تو کتنی ہلوڑے لیتا ہے, کتنے اونچے اونچے طوفان اونچی اونچی لہریں لاتا ہے, تو اس میں پیپل کا پتا کیسے تھمے گا. اور اس میں پھول بچہ کیسے تھمے گا, تو آ نہیں سکتا. پھر اس کا ارتھ کیا ہوا, چتر تو بنا ہوا ہے, چتروں کے آدھار پر شاستر بنے ہوئے ہیں. پہلے چتر بنتے ہیں پھر شاستر بنتے ہیں. بابا نے بولا ہے کہ شاستروں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ تم اس سمے پہلی کر سکتے ہو, لیکن ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے دنیا بھر کی دنت کتھاؤں میں جانے کی, جو ہم ٹیلی کرتے جا رہے ہیں ایک ایک کو بیٹھ کر کے. جب ہم کو پرماتما باپ ملا ہوا ہے سار بتانے کے لیے, شاستروں میں جو سار ہے وہ باپ سوئم ہی بتا رہا ہے, تو جو سار سار باتیں ہیں شاستروں کی ہم انہیں کو بیٹھ کر کے بدھی میں بیٹھائیں, انہیں کو بیٹھ کر کے ٹیلی کریں, انہیں پر منن چنتن کریں. تو یہ جو بات بولی کہ پیپل کے پتے پر تو بچہ آ نہیں سکتا, تو اس کا واسطوک ارتھ کیا ہوا, بابا نے کیوں بولا, ضرور اس میں کوئی رہسیہ ہے. ساگر اس کا مطلب گیان ساگر, جس میں گیان کی ہلوریں اٹھتی ہوں. مایا کے طوفان بھل کتنے بھی آئے لیکن جس پیپل کے پتے روپی ہلکی نویا پر کشن جیسی سیشاتما سول ویراجمان ہے, وہ نویا ڈوب نہیں سکتی. سست کی نیا ڈولے گی لیکن ڈوبے گی نہیں. مایا بیٹی کتنے بھی طوفان لائے, کتنی بھی تپسیا کرے, تپسیا ورت منائے, ایک نہیں دو دو ورت منائے, لیکن سست کی نیا ڈوبے گی نہیں, ڈولے گی تو, تاکہ بچوں کی پریکھا ہو جائے کہ اصلی اصلی بچے کون سے ہیں, پاس ودانر کتنے ہیں اور فرسٹ کلاس پاس ہونے والے کتنے ہیں, سیکنڈ کلاس کتنے ہیں اور تھرڈ کلاس کی تو بات ہی چھوڑا. تو پیپل کا پتا من, پیپل کے پتے میں کیا قسط ہوتی ہے, پیپل کا پتا جب ہوا کا جھونکا آتا ہے, بہت ہلکا بھی جھونکا ہوگا تو بھی بہت زور سے ہلے گا, اور پتے اتنے نہیں ہلتے, لیکن پیپل کا پتا تھوڑا سا مایا کا جھونکا آیا, ہوا کا جھونکا آیا اور وہ ہلے گا زور سے. تو یہ وشیشتا ہے, یعنی جس پتے کا آدھار کرشن جیسی سنگم کی کرشن جیسی شیشت آتما نے لیا ہے نئی سستی رچنے کے لیے, وہ پتا 63 جنموں میں پانچ بجاتے بجاتے, جیسے فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا مکان کی, تو فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ پتھر سب سے نیچے ہوتا ہے اور مکان اوپر ہوتا ہے, کنگورے اوپر دکھائی پڑتے ہیں سب کو لیکن فاؤنڈیشن کا پتھر کسی کو دکھائی نہیں پڑتا, اور اس پتھر کو بھی اچھی طرح کوٹا جاتا ہے, کوٹ کوٹ کر کے فاؤنڈیشن پکا کیا جاتا ہے. تو ایسے یہ مایا کے جھونکوں سے نویا ہلتی تو ہے لیکن یہ نویا ایسی نہیں ہے, فاؤنڈیشن ایسا کچا نہیں ہے جو بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے, کیونکہ کرشن جیسی شریشٹھ آتما اس پر وراجمان ہے. پیپل کے پتے پر स्थूल बच्चे के आने की बात नहीं है। कौन से बच्चे की बात है? हाँ, ब्रह्मा की सोल जो बीज रूप स्टेज पकड़ती है, वही बीज रूप स्टेज धारण करने वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में जो प्रवेश करके मस्तक पर विराजमान है, नई सृष्टि रचने के लिए किसका आधार लेती है? है? कोई सिख धर्म की ऐसी आत्मा है दुनिया का तमो प्रधान युग का और खास करके भारत का, विदेशी नहीं, भारत की परंपरा का, और भारत की परंपरा में भी जिसको बाबा ने बोला है सेकंड क्लास का प्रवृत्ति मार्ग निभाने वाला धर्म, फर्स्ट क्लास देवी देवता सनातन धर्म और दूसरा सिख धर्म, जिसने सदा सहयोग दिया है भारत को, दूसरे धर्म वालों को सहयोग नहीं दिया। भारत के लिए सिखों ने जितने बलिदान किए हैं, उतने बलिदान हिंदुओं ने भी नहीं किए। तो ऐसा सिख धर्म सहयोगी धर्म जो मर मिट करके भी भारत को सहयोग देने वाला है, ऐसे धर्म की आत्मा फाउंडेशन बनती है, और फाउंडेशन बनेगी तो वो अपने धर्म का जो विरुद्ध है, कौन सा, क्या विरुद्ध बताया सिख धर्म का? विशेष गुण धर्म क्या बताया? जाड़ का चित्र तो सुना होगा, कल नहीं सुना? नहीं सुना, क्या सुनने की जरूरत है? सिख धर्म का विशेष विरुद्ध बताया प्रवृत्ति मार्ग का निर्वहन करना, क्या? जैसे दूसरे धर्म के विविचारी होते हैं, एक छोर दूसरे कर लेते हैं, ऐसे सिख धर्म में नहीं चलता। उसमें ये पक्की मान्यता है, इस मान्यता के वो पक्के हैं कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, उनमें ये मान्यता बहुत गहरी समाई हुई है। इसलिए बाबा ने बोला कि दुनिया के और दूसरे धर्म देवी देवता सनातन धर्म को छोड़ करके कोई भी ऐसे नहीं है जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हों। एक सिख धर्म है जो प्रवृत्ति मार्ग का दूसरे नंबर का पक्का धर्म है, जो कलयुग के अंत तक भी हिंदू दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन इस मामले में सिख वाले जो हैं, सिख धर्म वाले प्रभावित नहीं हुए। तो ये भी तो आज के युग में एक बड़ी प्योरिटी है ना, इतनी प्योरिटी भी अगर कोई निभा ले तो बहुत बड़ी बात। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। तो ऐसे पत्ते का आधार क्या? पारिवारिक जीवन चलाने के लिए, सचिवी पारिवारिक व्यवस्था स्थापन करने के लिए फाउंडेशन कौन सा बनाया जाता? ऐसे पीपल के पत्ते का आधार लिया जाता, वो मकान का फाउंडेशन बनता, जो नई दुनिया रूपी किला का संगठन तैयार होना है उसका वो पहला पत्थर है। उसके बाद तो और ईंटें चीनी जाएंगी, लेकिन वो पहला पत्थर, 9 लाख ईंटों की चिनाई होनी, लेकिन वो पहला पत्थर। तो जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ न सके, उस बच्चे की बात नहीं है, ये तो सूक्ष्म रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा की बात है। बाप समझाते हैं, तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से। तुम माने कौन है? बाप समझाते हैं, समझाने वाला कौन है? कौन सा बाप? बाप तो बेहद के दो हैं, शिव बाप, शिव बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे, यह गर्भ से जन्म नहीं लेगा। किसके लिए बताया? तुम। तो रूहानी बाप किससे बात करते हैं? ब्रह्मा से बात करते हैं या कोई सामने बैठा हुआ बच्चा है जिससे बात करते हैं? नहीं, मुरली में बोला हुआ है कि बाप, बाबा तुमसे बात करते हैं, तुमको सुनाते हैं, ये तो बीच में सुन लेता है। बात किससे करते हैं? तुमसे। माने कोई विशेष आत्मा है जिसको विश्व की बादशाही मिलनी है, उस बच्चे को इमर्ज करके रूहानी बाप ब्रह्मा के तन में समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सत तुम, वही कृष्ण जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनेगा, वही कृष्ण तुम संगम युग में बनते। तो किसको कहा? रहम वाली आत्मा। तो बोला बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे, स्थूल गर्भ की बात नहीं है, वो तो विकारी गर्भ है, गोमूत से जन्म होता है, वो बीज ही पड़ता है मूत का, उसकी बात नहीं। तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से। वो गोमूत का गर्भ जो होता है उसमें न आराम माता को होता न आराम बच्चों को होता, और न जन्मदाता बाप को आराम महसूस होता। जिस समय बीजारोपण करता है उस समय भी उसको आराम नहीं, अशक्ति अनुभव होती है। तो तुम्हारा जो जन्म होगा वो गर्भ महल में होगा, गर्भ जेल से तुम्हारा जन्म, यानी तुम्हारा माने किसका? संगमयुगी कृष्ण का। बड़े आराम से जन्म लेंगे, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। वह गर्भ महल कहा जाता है, गर्भ जेल नहीं कही जाती। यहाँ है गर्भ जेल, अब ये ज्ञान के अंदर भी गर्भ जेल भी चलती है, और ज्ञानियों की दुनिया में गर्भ महल भी है। क्या कोई ज्ञान में आत्मा ऐसी है कि रहती है, रखड़ती है, रोती है, पीटती है, चलती भी है, माया से भी मुकाबला करती है, टूट भी नहीं जाती? कोई ऐसी है कि एक रस अवस्था में चलती रहती, रोना रखड़ना नहीं होता, प्रसन्नता पूर्वक चलती? तो गर्भ जेल किनको हुआ है? हाँ, परमात्मा बाप मिला, फिर बार बार निश्चय अनिश्चय। परमात्मा बाप तो सुखदाई है, दुखदाई तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, या तो फिर मिला नहीं। तो सुखदाई बाप जब मिल गया तो दुख का नाम निशान नहीं ब्राह्मण जीवन में, ऐसी कोई चीज नहीं जो अप्राप्त हो ब्राह्मणों के खजाने में, तो दुख क्यों होगा? तो गर्भ महल होता है कृष्ण का, और गर्भ महल में आराम से रहता है। जो जेर दिखाते हैं बच्चे के आसपास, गर्भ से बच्चा निकलता है उसके आस वो किसने लपेटा हुआ होता है? जेर में। माना वो जेर कोई जेल का अनुभव नहीं कराता, काहे का अनुभव कराता है? महल का, यानी प्रकाश का गर्भ दिखाया गया, ज्ञान के प्रकाश से वो चारों तरफ से लपेटा हुआ है, घेरा हुआ है। तो जो आत्मा ज्ञान के प्रकाश में रहने वाली होगी, अज्ञान के अंधेरे में आने वाली नहीं होगी, उसको ज्ञान में चलते हुए दुख का अनुभव नहीं हो सकता। तो जब वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है तो उसको किसी प्रकार का दुख या परेशानी महसूस नहीं हो सकती। यहाँ है गर्भ जेल, गर्भ जेल में है, यहाँ है गर्भ जेल और वहां होता है गर्भ महल। कहाँ? सती में। سنگم ندی کرشن کے لیے تو نہیں. سنگم ندی کرشن کہاں جنم لیتا ہے؟ سنگم میں بھی تو دو پارٹیشن ہو گئے نا, کلیگ کا انت اور ستیگ کا آگ. کرشن کا جنم کہاں ہوتا ہے؟ ہاں اس کا تو جنم بیکنٹھ میں ہوتا ہے نا. کرشن کا جنم بیکنٹھ میں ہوگا یا مرتیو لوک میں ہوگا؟ تو بیکنٹھ میں جب جنم ہوگا تو بیکنٹھ واسی کرشن کے لیے گرو محل ہوگا یا گرو جیل ہوگی؟ ضرور وہ گرو محل ہوگا. اس گرو محل میں وہ دکھ کا انوبھو نہیں کر سکتا. تو کب تک رہا گرو محل اور کب جنم ہوا؟ ایڈوانس نالج کی گیان کی بچی کیا کہتی ہے؟ کب کہیں گے کرشن کا جنم ہوا؟ یعنی برہما کی سول براہمنوں کی سنگمی بھی دنیا میں کہیں پرکٹ ہوئی ساکار روپ میں. ہاں 88-89 کیونکہ تریتا یوگ کی شوٹنگ کا پورا ہونا اور دواپر یوگ کی شوٹنگ کا شروع ہونا اور کرشن کا یوگ آ گیا. کرشن کو کون سے یوگ میں دکھاتے ہیں بھکتی مارگ میں؟ دواپر یوگ. تو باپ سمجھاتے ہیں وہاں بیکنٹھ میں ہے گرو محل, آتما کو پہلے ساکھاتکار ہوتا ہے. وہ استھول سورگ میں تو ہوگا وہ ساکھاتکار, اور یہاں کون سا ساکھاتکار ہوتا ہے؟ بدھی کا ساکھاتکار, جان کے آدھار پر پورا پکا ساکھاتکار ہوتا ہے کہ سنگ ندھی کرشن کا ہو, پرجاپتا کا ہو, شنکر کا ہو یا نارائن کا ہو, وہ چاروں ہی ناموں سے ویکتتو ایک ہی ہے. یہ پارٹ مجھے ادا کرنا ہے. اس آتما کو یہ ساکھاتکار ہوتا ہے, پہلے سے نشچت ہو جاتا ہے بدھی کے آدھار پر, جان کے ساکھاتکار کے آدھار پر. آتما کو پہلے ساکھاتکار ہوتا ہے, یہ تن چھوڑ دوسرا لینا ہے. کون سی آتما کو ساکھاتکار ہوا؟ سنگمی کرشن کون؟ آتما کون سی؟ رام والی آتما. وہ رام والی تو آتما رام کی ہی ہو گئی, کرشن والی آتما کرشن کی ہو ہے. ہاں برہما کی جو سوکشم شریر کے بندھن میں ہے, وہ سوکشم شریر کے بندھن میں رہنے والی آتما کو یہ نشچے بدھی میں بیٹھتا ہے. کیا کہ اب مجھے پرتکشتا روپی جنم کیسا لینا ہے اور کہاں سے لینا ہے؟ گرو محل سے جنم لینا ہے. ایسے نہیں کہ ہارٹ فیل ہو کر کے سوکشم شریر کا استتو بنے گا, وہ تو دکھ ہو گیا نا. یہاں کسی پرکار کا کوئی دکھ نہیں. پہلے سے ساکھاتکار ہو گیا, آرام سے کرشن پرتکش ہوتا ہے براہمنوں کی سنگم کی دنیا میں, کوئی تکلیف نہیں. ایسا ڈراما بنا ہوا ہے. کنسیڈر آسندی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے, چاہے کتنے بھی لاکھ بٹھائے پہرے, پھر بھی وہ جنم لے کر سرکشت بچ جاتا ہے. تو بولا یہ تن چھوڑ دوسرا لینا ہے. آتما ابھیمانی ہے, پرماتما کو نہیں جانتے, نہ رچنا کو نہ رچیتا کے آدھ مدینت کو جانتے ہیں. ابھی تم جانتے ہو کہ رچنا کون ہے اور رچیتا کون ہے. رچنا کون ہے؟ تو اس میں بھی پہلی رچنا کون ہے؟ بچے تو انیک ہو گئے, چورتی باقی رچنا ہو گئی. رچنا کون ہے؟ ایک رچنا کا نام بتاؤ. شیو بابا. اچھا چلو شیو بابا رچنا ہو گئی. شیو بابا رچنا ہو گئی, رچتا شیو بابا. پھر رچنا کون؟ ایک بتاؤ, فرسٹ نمبر اول نمبر رچنا برہما. برہما مانے کرشن. فرسٹ رچنا کون؟
कृष्ण, तो कृष्ण हो गई रचना, रचयिता कौन हुआ?
शिव
बाबा। चलो ये तो यहाँ हो गया संगम में, और सत्युग में कौन होगा? कृष्ण होगी फर्स्ट रचना, पहला पत्ता,